ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की ये तीन ओम शांति आप सभी को कौन सी बात याद दिलाती है? नहीं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ने मुरली में अंत में यही कहा है ना? आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा ना कि बस यही गीत दिल में सदैव गाते रहो। तो इसके आधार से हम बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकते हैं कल के वरदान में। तो आपके दिल में यही गीत गाते रहते हैं, मेरा बाबा के सिवाय कोई है? नहीं है ना? देखो, मेरा बाबा कह दिया तो बाकी सब मेरा मेरा उसमें समा गए। बस यही गीत गाना और कुछ नहीं। तो आप सभी ने बाप दादा से अच्छी रीति से मिलन मनाया। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि इस बारी बाबा तो बहुत बरसों से आते रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाते रहे, परंतु इस बारी बाप दादा की मिलन में क्या नवीनता थी? बहुत विशेषता थी ना? वैसे बाबा मुरली चलाने के बाद फिर कभी अंत में बाबा कहते हैं, अच्छा अभी एक मिनट का ड्रिल करेंगे, एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, ऐसे ड्रिल कराते रहे। परंतु इस बारी मुरली में ये नवीनता थी कि बाबा ने प्रैक्टिकली ड्रिल कराते हुए मुरली चालू किया। बाबा हम सबको सूक्ष्म वतन में ले गए और सूक्ष्म वतन में काफी समय रहने का अनुभव कराया। तो इस बारी मुरली की नवीनता ये थी कि प्रैक्टिकल हमको फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराया। आप सभी ने किया? बाबा ने विशेष जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि कहा जाता है ना, तो बाबा तो फरिश्ता है, तो हम सभी को भी फरिश्ते के रूप में बाबा ने देखा। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारी पढ़ाई अभी बहुत एडवांस में जा रहा है। पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है ना, कितने प्रकार से पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। एक तो मुख से बोल करके, अपने शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा, और दूसरी भाषा पढ़ाई पढ़ाने की कर्मों के द्वारा। क्या कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कर्म शब्द से भी जास्ती पढ़ा सकते। और तीसरी भाषा कौन सी? साइलेंस, शांति की भाषा। जब भी हम कुछ बोलते नहीं हैं, माना समझो उस समय हम बहुत बोल रहे हैं, परंतु शांति की भाषा भी वही समझ सकते जो सदा शांति में रहते हैं। और चौथा कौन सी भाषा है? नयनों की भाषा। इस बारी बाप दादा ने बहुत कुछ बोला नयनों की भाषा से। जैसे नहीं, अगर हम बाबा के जैसे होता है ना फ्रीक्वेंसी, उसी लेवल में होंगे तो हमको समझ में आएगा। तो एक तो नयनों की भाषा और वाइब्रेशंस की भाषा, और मुख्य चेहरे से। जैसे आपको भी किसी को कुछ बताना हो कभी मुख से नहीं बोलना हो तो चेहरे ऐसा बना लेते हैं ना, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है, मुख से नहीं बोलते हैं पर चेहरा ऐसा बना लेते, वो समझ जाते। तो अभी तक तो बाबा ने हमको वाचन से यानी शब्दों के द्वारा बहुत पढ़ाई पढ़ाई, और ये सब पढ़ाई पढ़ाने का सारांश क्या था कि हमको आवाज से परे जाना है। बाबा क्यों साकार शरीर में आकर के अभी तक हमसे मिलन मनाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको इस साकारी वतन से आकारी वतन निराकारी वतन में जाना है। और साकारी वतन में भी कोई आवाज नहीं, आकारी वतन में भी कोई आवाज नहीं, और निराकारी वतन में भी कोई आवाज नहीं। तो हमको बाबा से इस बारी इशारा मिला है कि कम बोलो। जहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि फरिश्ता बोलता नहीं है, वो चेहरे से ही सब कुछ सुनाते हैं। भगवान का संदेश फरिश्ता कैसा देता है, अपने आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा। इसलिए बाबा ने खास कहा कि आपकी चेहरा ऐसे खुशनुमा रहे, आप ऐसे खुश रहो, आपकी चलन से, आपकी चेहरे से सबको मालूम पड़े कि आप क्या बनने वाले हैं। वैसे तो जब भी हम किसी से पूछते हैं ना, आप राजयोग द्वारा क्या बनेंगे, तो सभी कहते हैं हम मनुष्य से देवता बनेंगे। परंतु देवता बनने के पहले ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और फरिश्तों की भाषा ही शांति की है। फरिश्तों की विशेष रहने का स्थान भी इस पांच तत्वों से पार। तो हमको बाबा ने ये होमवर्क दिया है। बाबा तो हम सबको ऑलरेडी फरिश्ते के रूप में देखा है, परंतु हम हरेक अपने आप को उस रूप में देखना है। आप सभी ने अपना अपना फरिश्ता रूप देखा है, कैसा रहता है थोड़ा वर्णन कीजिए। लाइट रहता है और चमकीला रहता है और हल्का रहता है, और ये सब किस आधार से लाइट रहते हैं, चमकीला रहता है, बहुत हल्के, डबल लाइट, इस सब का आधार है पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता चाहिए। जब तक हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता नहीं है, तब तक हम ना हल्के अनुभव कर सकते हैं, ना हमारे चमकीला वस्त्र जो प्रकाश ही प्रकाश है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना कि फरिश्ता किसको कहा जाता है। फरिश्ता किसको कहा जाता है? अभी तो हम इस कलयुगी दुनिया के मानव हैं, और इसके ऊपर है आकारी दुनिया जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा है। तो कई बार हम ब्राह्मणों से पूछते ना कि सूक्ष्म वतन कितना दूर है यहाँ से, और यहाँ जाने में कितना समय लगता है, तो आपका क्या जवाब होगा? सूक्ष्म वतन कितना दूर है? सूर्य चांद सितारों से भी पार, इतना दूर। और हम कहते हैं एक सेकंड, कैसे एक सेकंड में जा सकते? तो एक सेकंड में जाने की विधि क्या है, विधि क्या है, हम आपको बताते हैं आज ये सीक्रेट। भले किस सबको सुनाओ, कोई कोई कहते ना कोई सीक्रेट सुनाते, कहते किसी को नहीं सुना दा, हम तो कहते कि सबको सुनाओ। तो एक सेकंड में साकार से आकारी बनने के लिए हमको क्या करना है? एक सेकंड में बाबा से मिलन मनाने के लिए, एक सेकंड में फरिश्ता का वस्त्र धारण करने के लिए, सिर्फ हमारा वेश बदलना है और कुछ नहीं करना है। जब आप वेश बदलेंगे तो देश आप ही बदल जाएगा। ड्रेस बदल दो तो एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। अभी हम ये पांच तत्वों के पुतले में है ना, आत्मा पांच तत्वों के कार्ब के अंदर है, इसको मानव कहते हैं ना। और फरिश्ता कौन है? वही ज्योति बिंदु आत्मा, परंतु लाइट के कार्ब के अंदर। तो हमको क्या करना है, एक सेकंड में अपनी वस्त्र को बदली करना है। तो अगर हमको ये पांच तत्वों के बने हुए पुतले से निकल करके प्रकाशमय काया में एक सेकंड में जाना है, तो ये वस्त्र कैसे होना चाहिए? लूज ड्रेस। किसी किसी का ड्रेस बहुत टाइट होता है ना, वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो हमको ये वस्त्र लूज होना चाहिए, जब चाहे हम तब हम निकाल के दूसरा पहन लेवे। तो ये शरीर रूपी वस्त्र को लूज पहनने का मतलब क्या है कि सदीव सवेरे उठते ही, अमृत वेले जब उठते हैं ना, उसी समय से लेकर हमको ये स्मृति लाना है मन में कि मैं आत्मा आज परंधाम से इस सृष्टि पर अवतरित हो रही हूँ, यहाँ का रहने वाली नहीं हूँ। मैं आत्मा परंधाम से, ब्रह्मलोक से इस शरीर में प्रवेश हो रही हूँ, मैं अवतार हूँ। तो ये स्मृति हमको याद रहे ना, तो हम ये शरीर को ऐसे यूज करेंगे जैसे कि कार्य के लिए यूज किया और फिर उससे अलग हो गए, क्योंकि हम यहाँ के साकारी वतन के निवासी नहीं हैं, अवतार हैं। तो अवतार की स्मृति रहेगा तो दो फायदा है। एक तो अवतार इसलिए होता है भगवान का संदेश सुनाने के लिए, अवतरण होता है इसलिए कि परमात्मा का संदेश, मैसेंजर कहते ना अवतार को। और दूसरा, अवतार का किसी के साथ कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि अवतरित आत्मा पवित्र आत्मा होती और पवित्र आत्मा का किसी के साथ भी हिसाब किताब नहीं होता है। तो इसलिए हम किसी के साथ हिसाब किताब बनाने से भी बच जाएंगे और हमारा काम ही एक है, परमात्मा का संदेश सबको सुनाना बस। तो जब चाहे हम आवे शरीर में काम के लिए, काम पूरा हुआ वापस चले जाए। तो वर्तमान समय हमको ये एक्सरसाइज बहुत करना है, एक सेकंड में साकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। जैसे एक घर में तीन कमरा होता है ना, तो एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में जाना क्या मेहनत है। जैसे हमारा तीन ड्रेस है समझो, तो हम एक ड्रेस निकाल के दूसरे पहनने में क्या मेहनत है। परंतु हम वो लूज ड्रेस पहने, टाइट ड्रेस नहीं। कोई भी पुराने संस्कार हमको पीछे खींचे नहीं। जब भी हम कहते ना कि शरीर रूपी ड्रेस बहुत टाइट हो गया, कहाँ टाइटनेस है? कोई न कोई संस्कार को मेरा संस्कार समझ के पकड़ के रखा है। इसलिए जब हम चाहते हैं एक सेकंड में अपना प्रकाशमय काया को हम धारण कर लेवे, तो वो नहीं हो सकता। क्यों ये एक्सरसाइज जरूरी है वर्तमान समय? क्योंकि अभी हमको वापस घर जाना है। जब घर से आए थे तो हम तो बिना शरीर के आए थे, यहाँ शरीर धारण किया, अभी पार्ट पूरा हुआ, अभी हमको वापस घर जाना है। और घर जाने के पहले वया सूक्ष्म वतन में जाना है, ये भी बात है ना। जब हम परंधाम से आए थे तो सीधा ही यहाँ आ गए साकारी वतन में, सत्युग में, पर यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो वाया सूक्ष्म वतन जाना है। तो इसलिए हमको अभी अपने आप को ट्रेनिंग देना है। तो अभी से लेकर आप ऐसे समझो कि आप है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आते हो, फिर वापस चले जाना है। जैसे कोई मकान में आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो कोई काम के लिए ग्राउंड फ्लोर में आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं ना, रहते नहीं है ग्राउंड फ्लोर, आपका घर फर्स्ट फ्लोर में है। तो अभी ऐसे समझो, अभी ये नहीं कि मैं साकारी वतनवासी हूँ, मेरे को सूक्ष्म वतन जाना है, ऐसा नहीं। मैं सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता हूँ, मैं साकारी वतन में कर्म करने के लिए आता हूँ। कर्म करते हुए भी करण करावनहार की स्मृति दो रूप से हमारे अंदर होना चाहिए। एक तो हम जब शरीर को चलाते हैं, अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, नहाते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, तो उसी समय भी हम ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा करणहार और मैं आत्मा करावनहार भी हूँ। तो शरीर के साथ कोई भी प्रकार का अटैचमेंट, मोह ममता नहीं रहेगा। और दूसरा, जब भी कोई सेवा करना है बाबा की सेवा के लिए, उसी समय हमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, करने वाला और कराने वाला बाबा है। तो सेवा के लिए करण करावनहार बाबा है, और अपनी शरीर को हम संभालने के लिए मैं आत्मा करण करावनहार हूँ। तो ये दोनों स्मृति जब हम साकारी वतन में आते हैं, इससे अगर हम कर्म करते हैं तो हम सहज ही कर्म से न्यारा हो सकते हैं। लोग तो कहते ना कि आत्मा लेपक्षेप से न्यारे हैं, आत्मा को कुछ नहीं लगता। वास्तव में फरिश्ते आत्मा जब सृष्टि पर आते हैं, कर्म करते हैं, तो उस आत्मा का कोई भी लेपक्षेप नहीं होता है, माना आत्मा को कुछ नहीं लगता, क्योंकि आत्मा न्यारी और प्यारी है। तो फरिश्ता माना प्यारा भी रहे सबका और सबसे न्यारा भी। तो न्यारे हैं तो हम एक सेकंड में इससे डिटैच हो सकते शरीर से। नो, फरिश्तों को क्यों सदैव ऊंचा ऊंचा उठते हुए दिखाते? अभी तो हम फरिश्ते हैं, हम तो ऐसे पंछी के माफिक उड़ तो नहीं रहे हैं। उड़ने का मतलब क्या होता है? फरिश्ता माना उड़ता पंछी। तो क्यों दिखाते हैं फरिश्ता सदैव ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं? उनका पैर कभी पृथ्वी को टच नहीं करता। तो वास्तव में इसका क्या अर्थ है? उड़ने का मतलब क्या है? माना हमारी बुद्धि इस दुनिया के किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान की तरफ आकर्षण नहीं हो। तो उड़ने का अर्थ यही है, सर्व आकर्षण से परे कोई भी बात फरिश्ता आत्मा को आकर्षण नहीं कर सकता। इसलिए उसको टाइटल है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। देवता ही तो है ही इच्छा मात्रम अविद्या, परंतु उसके पहले फरिश्ते की स्थिति भी वही है, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं। परंतु ब्राह्मण तो बहुत होशियार है ना, वो कहते हैं कि हमको इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। तो एक बारी बाबा ने कहा ना, इच्छा है मोटा धागा, अच्छा लगता है वो महीन धागा। है तो वो भी इच्छा। तो कोई भी प्रकार की इच्छा है तो हम फरिश्ते माफिक उड़ नहीं सकते, क्योंकि धरती के मानव बन जाएंगे, चाहिए चाहिए चाहिए। आपको अभी कुछ चाहिए क्या? हाथ उठाओ, किसी को कुछ चाहिए? आप क्या गीत गाते हैं, एक बाप मिल गया जो पाना था सो पा लिया, फिर उसके बाद फिर चाहिए चाहिए क्यों? नहीं। तो फरिश्ता माना ऊपर ऊपर उड़ने वाले। माना बाबा ने कहा ना कि आप इतने देह से परे हो जाओ, आपके सामने जो भी आवे वो अपना देह को भूल जाए। अभी ऐसा अभ्यास करना है फरिश्ता। तो हम ही अपने देहबान में नहीं है तो दूसरे हमको देखते ही उसका देहबान खत्म हो जाए। देखो, एक होता है देह अहंकार, दूसरा होता है देह अभिमान, तीसरा है देह भान। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद देह अहंकार को तो हम पहचान लेते हैं, वो तो स्थूल बात है, और देह अभिमान को भी हम जान सकते, परंतु देह भान जो है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो भान है ना, ये निकालना बहुत मेहनत की बात है। इसलिए बाबा रोज रोज साकार मुरली में भी यही याद दिलाते हैं कि बच्चे याद करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये अभ्यास करो। तो फरिश्ता माना ही उड़ता पंछी, फरिश्ता माना ही इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता माना ही न्यारा और प्यारा, फरिश्ता माना ही अलौकिक। बाबा ने एक ही शब्द, हमारी वृत्ति दृष्टि कृति सब कुछ लौकिक नहीं, साधारण नहीं। जैसे पहले हम साधारणी बोलते थे, साधारणी चलते थे, अभी साधारणता नहीं, हमारे अंदर अल्लाह लोग हम दिखाई दे, हम कहे नहीं किसी को हम अल्लाह के बच्चे हैं, पर हमको देख करके दूसरों को मालूम हो कि ये अल्लाह लोग हैं। माना जितना जितना हमारे अंदर अलौकिकता होंगी, लौकिकता से परे, उतना दूसरों को लगेगा कि ये इस दुनिया के नहीं हैं, ये ऊपर से उतरे हैं, ये अवतार है, ये फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते खुद अपने को खुद नहीं कहते कि मैं फरिश्ता हूँ। नो, फरिश्ते का काम क्या होता है, जहां पर भी जिसकी जरूरत है ना, वहां पर बिना बोले आ जाते हैं, मदद करके चले जाते हैं। तो माना वो हल्के है ना, हल्कापन का मतलब क्या होता है, फरिश्ता माना हल्का, हल्का माना कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, बंधन नहीं। तो फरिश्ता माना फ्री बर्ड, बंधन मुक्त, कोई भी हद नहीं। बंधन का मतलब है हद में रहना, फरिश्ता माना बेहद। तो हमको ये धारणा चाहिए, ऐसा हम फरिश्ता नहीं बन जाएंगे। बाबा ने तो हमारा अंतिम स्थिति देखा, अभी हमको चेक करके देखना है ये सब धारणा को सामने रख करके, लिस्ट को, कि इसमें कौन सी बातें मेरे में अभी कितना परसेंटेज है, तो उसको बढ़ाना है, वो हमारा काम है। बाबा ने तो हमारा अंतिम स्वरूप देख लिया, पर ये अभी हमको पहुंचना है ना वहां पर, तो अभी हम कहाँ खड़े हैं और कितनी धारणाएं और हमको करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरों को दिखाई देगा, जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो हमने तो बाबा को देखा था एक बारी 6 मास पहले, फरिश्ता बनने के पहले, पर हम तो इतना नहीं जानती थी, बहुत नए थे ज्ञान में, परंतु फिर भी अभी याद आता है। तो बाबा 1-2 साल के पहले ही देह से न्यारे, एकदम यहाँ होते हुए भी जैसे कि यहाँ है नहीं, दूसरों को लगता था, बातचीत करने में चलने में बाबा जैसे कि इस दुनिया से परे हैं। तो हमको भी ऐसे अभी जितना हो सके कम से कम बोलना है, ज्यादा समय शांति की दुनिया में, शांति के बारे में अनुभव करना, एकाग्रता का अनुभव करना, यू नो। इसलिए कहते ना कि फरिश्ता माना जिसका कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं, इसलिए कोई रिश्ता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर कोई खींचेगा ही नहीं। फरिश्ता एक बाबा का बाबा ही संसार है, तो वो बाबा के संसार में रहते हैं और यह इस संसार से उनका बेहद का वैराग्य। अगर अभी भी हम युद्ध करते हैं ना, योग में बैठते हैं तो अभी तक युद्ध करते हैं, तो अभी हम फरिश्ते बनने में बहुत समय चाहिए। फरिश्ता माना एक सेकंड में मैंने सोचा और हम स्मृति स्वरूप हो गए। कल हम लोग रिवाइज कर रहे थे बाबा की मुरली, इसमें विशेष एक बात बताया गया, एक होता है प्रैक्टिस, अभ्यास करने का स्मृति, दूसरा होता है प्रैक्टिकल माना स्मृति स्वरूप। तो अभी हमको सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति सिर्फ है तो वो अभ्यास की स्टेज है, अभी हमको चाहिए स्मृति स्वरूप, वो भी कर्म में, क्योंकि कर्म में ही हमारी स्मृति विस्मृत हो जाती। तो अभी हमको विशेष अटेंशन क्या रहना है, कोई भी कर्म करते हुए, साधारण खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, खाना पकाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसी समय हमारी स्मृति स्वरूप में बदल जाए, माना हमारी शिकल को कोई देखे, रूप को, तो हमारी स्मृति का दर्शन वो करे। जैसे भी देखो अभी कि कोई दुखी होते हैं मन में, उसकी फेस से उसका दुख नजर आता है ना, किसी की मन में खुशी होती है उसकी चेहरे से वो खुशी नजर आती है ना। तो हमारी स्मृति अगर आत्मिक स्मृति है, मैं फरिश्ता हूँ, वो स्मृति है, उसका स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई दे। तो इसलिए कल हम लोग रिवाइज करने में ये बता रहे थे कि हम सब एक अपने आप से प्रण कर लेवे, प्रॉमिस, कि हम कभी भी अपनी चेहरे की मुस्कुराहट को जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कहे कि मैं तो खुशी में थी परंतु इसने आके मेरे को ऐसा ऐसा कह दिया तो क्या करूं, रोना भी चालू कर देते, गुस्सा भी चालू कर देते। नहीं, कहने वाले कहने दो, परंतु हम अपनी मुस्कुराहट को क्यों छोड़े, ये अपना है ना। परंतु अंदर में खुशी होगा, अंदर में खुशी होंगी तो चेहरे में मालूम पड़ेगा। तो अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद अंदर में हमको खुशी नहीं है तो हम ब्राह्मण बन के क्या किया। एक बार दादी गुलजार ने कहा था कि कई ब्राह्मण कहते हैं कि दादी जब परिवार में आते हैं ना तभी खुशी गुम हो जाती है, सेवा में जाते हैं ना माया आ जाती है, खुशी गुम हो जाती है, इसलिए हम सेवा करें ही नहीं। तो दादी ने कहा ऐसा नहीं, परंतु कुछ भी करो, अगर जिसी भी कार्य में आपकी खुशी गुम हो जाता है उसको छोड़ दो, पर खुशी जाने नहीं दो। हाँ, तो इस मुरली से विशेष बाबा ने ये दो अंडरलाइन कराया है, हाँ, खुशी कभी नहीं कम करना और मुस्कुराहट कभी जाने नहीं देना, और सदैव अपने आप को इस दुनिया के मानव नहीं, हम आकारी दुनिया के फरिश्ते। तो उसकी प्रैक्टिकल सबूत यही होगा कि हमको इस दुनिया से वैराग्य। एक बार प्रकाशमणि दादी ने भी कहा था ना कि ब्राह्मणों में तीन प्रकार का वैराग्य तो आ गया है, देह से वैराग्य आ गया है, देह के संबंधियों से भी वैराग्य आ गया है, इनफ, काफी दुख सहन किया, और देह की दुनिया पदार्थों से भी वैराग्य आ गया है, बाकी एक नहीं आया है, वो कौन सा, अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य, अभी तक उसको पकड़ के रखा है थोड़ा, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, तो इसलिए संसार की परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो हमको इससे भी वैराग्य, वैसे देखा जाए तो ये मेरा संस्कार नहीं है, ये तो पराया संस्कार है ना रावण का, परंतु हमने उसको नाम दे दिया मेरा मेरा, तो उसको बिठा दिया। वैसे भी कहा जाता है ना, जहाँ मेरा जाता है वहाँ ममता होती है, अटैचमेंट आता है। अगर हम उसको मेरा नहीं समझेंगे तो अटैचमेंट भी नहीं होगा। अगर हमको मेरा संस्कार ही समझना है तो वो आप सत्युग के संस्कार को याद करो, आपके परंदा में क्या संस्कार था उसको याद करो। ये तो हमारा नहीं है ना, ये तो हमने रावण से बोरो किया। कभी कभी कहते ना ये चोरी माल है। इसलिए वो दुख देता है। तो जब तक हमको पुराने संस्कार से बेहद का वैराग्य नहीं आया है, तब तक हम पांव उठ नहीं सकता। तो अभी मधुबन में है ना, मधुबन को क्या कहते हैं, परिवर्तन भूमि। तो यहाँ आकर के अगर हम इसमें परिवर्तन नहीं किया तो हमने क्या किया। तो इसलिए हरेक हम अपने आप को चेक करके देखें कि कौन सा ऐसा पुराना संस्कार अभी तक हमने परिवर्तन नहीं किया है। आज भी बाबा की वरदान में था ना, माया भी बहुत होशियार है, जो आपकी कमी है उसको ही यूज करके आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी करती है। अगर हम अपनी अपनी कमियों को महसूस कर लिया, परिवर्तन कर लिया, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कोई समस्या। तो इसलिए माया की उसकी भी जो स्यानापन है उसको भी हमको समझ करके उससे दूर रहना है। तो फरिश्ता बनना मना पांव, बुद्धि रूपी पांव इस शरीर रूपी पृथ्वी के आकर्षण से दूर। तो बेहद में इसलिए उसकी फीलिंग्स, फरिश्ते की मन में क्या फीलिंग्स होता है, सब के लिए शुभ भावना शुभ कामना। एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि एक ही शब्द याद करो शुभ, और उसको चार प्रकार से यूज करो, तभी हम सहज ही अलौकिक फरिश्ता बन जाएंगे। शुभ, एक ही शुभ अक्षर यूज याद करो, शुभ भावना शुभ चिंतन शुभ चिंतक शुभ भावना शुभ कामना, उससे बढ़कर पांचवे में नहीं जाओ। तो फरिश्ता माना सदैव शुभ सोचने वाले, सब के लिए। ऐसा नहीं कि हमको जो अच्छे लगते उनके बारे में ऐसा सोचेंगे, जो हमको अच्छे नहीं लगे उनके बारे में हम शुभ नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं। जैसे शिव बाबा कल्याणकारी हैं, तो फरिश्ते भी वास्तव में ईश्वर के गुण को धारण करने वाले हैं ना। तो बस एक ही शब्द याद कर दो, शुभ। फरिश्ता बनना माना शुभ चिंतन शुभ चिंतक शुभ भावना शुभ कामना। तो हम न किसी के लिए समस्या बनेंगे, न हम हमारे सामने कोई विघ्न आएगा, तो सहज ही हम फरिश्ते बन सकते। तो हमारे चिंतन की धारा भी बदल जाता है। इसलिए लोग फरिश्ते को जब भी आप देखते हो तो क्या रूप दिखाई देता है, बच्चे के रूप में दिखाते हैं ना, छोटे बच्चे के रूप में ही दिखाते हैं। तो कभी कभी सोच चलता है कि क्या फरिश्ते बड़े नहीं होते हैं कभी भी। तो वास्तव में फरिश्ते को छोटे बच्चे के रूप में दिखाने का मतलब कि पवित्रता, बोलापन, माना उसके अंदर इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता, इतने बोले, अपवित्रता स्वप्न मात्र में भी नहीं। तो हमको एक तरह से बच्चा जैसा भी बनना है, पर बचपन नहीं दिखाना है। बच्चा जैसा गुण धारण करना है, परंतु बचपन नहीं दिखाना है। केयरलेस हो जाएंगे, चाइल्डिश हो जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। तो हम सबका पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या रहना चाहिए, अभी जल्दी वापस जाना है। एक ही मंत्र बुद्धि में याद रखें, घर जाना है, वाया सूक्ष्म वतन घर जाना है। सीधा नहीं जा सकते, रिटर्न टिकट सीधा नहीं है, रिटर्न टिकट वाया सूक्ष्म वतन, तो इसलिए वहां जाने के लिए उसका रूप और उसके देश को हमको याद करना है। तो वहां की भाषा क्या है, वहां का खाना क्या है, वहां कैसे चलते हैं, वो सब अभी रिहर्सल अभी हमको करना है। फरिश्तों का खाना क्या होगा, चलना तो रॉयल रॉयल्टी, उसका आवाज भी नहीं, उसका पाव ही धरनी पर नहीं होता है तो आवाज कहाँ से आएगा। फरिश्ते खाना खाएंगे, क्या खाते होंगे, शुभ संकल्प ही उनका भोजन है, और कोई नहीं। व्यर्थ संकल्प आ गया तो हम मनुष्य बन जाएंगे। तो अगर हमको फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ संकल्पों की अविद्या, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन बुद्धि को नहीं खिलाना है। पॉसिबल? तो अगर हमको व्यर्थ से वैराग्य आने के लिए क्या करें? जब व्यर्थ से वैराग्य आएगा तो वो व्यर्थ का भोजन नहीं देंगे। तो हम एक बारी चर्चा कर रहे थे कि कौन सा ऐसा हम अपने को समझाए जिससे हमको व्यर्थ से घृणा आ जाए, घृणा आ जाए। जैसे अभी देखो, जब भी हम ब्राह्मण बने शूद्र से, पहले तो मांसाहारी कितने लोग थे, सस्याहारी कैसे बने, तो उससे वैराग्य आया ना, ये हमारा भोजन नहीं, हम तो मूर्ति है, हमारा शरीर मंदिर है, तो हम उसको छोड़ दिया, घृणा आ गई है ना। तो अभी हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए भी, व्यर्थ से वैराग्य के लिए भी, व्यर्थ को क्या समझना है, ये भी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन बन गए। क्योंकि व्यर्थ क्या होता है, पास्ट की बातें, बीती हुई बातें। कोई शरीर छोड़ देते उसको आप क्या कहेंगे, फलाना मर गया, पास्ट, जो मुर्दा हो जाता है उसको पास्ट कहते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन खाना क्या होता है, मुर्दा ही होता है। तो बीती हुई बातों को, बुद्धि को खिलाना माना मांसाहारी बनना। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? तो आज से लेकर व्यर्थ की अविद्या, क्योंकि हमको फरिश्ता बनना है तो बुद्धि का भोजन भी इतना शुद्ध चाहिए। बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि दिया है निर्णय करने के लिए भी, संकल्प तो मन में आएगा परंतु उसको निर्णय करने के लिए बुद्धि दिया है ना, दिव्य बुद्धि, उसको यूज करो। ये व्यर्थ है तो उसको खत्म, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। टच कर दिया तो हम वैष्णव नहीं, वैष्णव सस्याहारी होते हैं ना, वो मांसाहारी को टच भी नहीं करते। तो आज से लेकर हमको व्यर्थ के साथ, व्यर्थ से उपवास करना है, या तो व्यर्थ से अविद्या, तभी हम समर्थ बनेंगे। समर्थ का मतलब क्या है कि शुद्ध विचार, शुभ, पहले शुभ फिर शुद्ध, पहले पॉजिटिव। हम मन में हम देखे कि सारा दिन हमारा विचार कैसा चलता है, नकारात्मक या सकारात्मक। अगर सकारात्मक विचार ज्यादा चलता है तो फिर वो शुद्ध संकल्पों में पवित्र हो जाए, परिवर्तन हो जाएगा। पहले संकल्प शुद्ध चाहिए, पहले संकल्प शुभ चाहिए, उसके बाद शुद्ध संकल्प, उसके बाद शक्तिशाली संकल्प। ऐसे ही बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही शुद्ध शक्तिशाली संकल्प नहीं आ जाएगा। पहले हमको शुभ संकल्प, आत्माभिमानी स्थिति, फिर है शुद्ध संकल्प, फरिश्ते की स्थिति, फिर है शक्तिशाली संकल्प, उसके बाद है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प माना ऊंचे ऊंचे संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्पों में ये चारों बातें होती है, उसमें शुद्धता भी होती है, उसमें शक्ति भी होती है, और उसके अंदर कल्याणकारी भावना भी होता है। तो आप अपने संकल्प को चेक करो, और संकल्पों की गति भी अभी कम होना चाहिए। जितना हो सके संकल्पों को बचाना है, तभी हम शक्तिशाली बनेंगे ना। तो एक बारी दादी जानकी ने हम लोगों को विदेशियों के क्लास में कहा था कि अभी देखो हम कितना सोचते हैं, पता है, एक सेकंड में 2 संकल्प चलाते हैं, तो 1 मिनट में 120 संकल्प चलाते, बहुत ज्यादा। तो कम से कम हम इतना तो करें, 2 सेकंड में 1 संकल्प, तो 1 मिनट में 60 संकल्प होगा, तो बाकी तो बचा दिया ना। तो जितना जितना हम संकल्पों को बचाएंगे उतना हमारा मन शक्तिशाली होगा। तो जब ही शक्तिशाली होगा तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएंगे। जब चाहे हम इस शरीर से, साकारी शरीर से आकारी शरीर में जा सकते। अगर हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है तो हम मन को ऑर्डर देंगे तो जा नहीं सकते। और कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि मन में ताकत नहीं है। तो पहले तो हम ताकत का भोजन मन को देवे, मन को शक्तिशाली बनाए, फिर उसके बाद जब चाहे जैसा चाहे अपने मन को हम चला सके। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के बिना हम ये तीनों लोकों में सहज सैर नहीं कर सकते। निराकारी, आकारी और साकारी, ये तीनों लोक या तीनों ड्रेस, इस जब चाहे तब हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, जब हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना, हम राज्यों का अभ्यास करते हैं, उसका मतलब क्या है? राजा माना प्रजा अपने राजा के कहने के अनुसार चले ना। तो ये भी हम चेक करके देखें, जब चाहे जितना समय चाहे जहां चाहे अपने मन को वहां हम लगा सके, तब हम समझे कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। तो ऐसा नहीं कि अभी भी हम योग में बैठते हैं तो हमारा युद्ध ही चलता रहे। तो अगर युद्ध करते करते हम शरीर छोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? तो लक्ष्य है हमारा झूले में झूलने का, कृष्ण के जैसा। परंतु ऐसा ना हो कि हम युद्ध में ही हमारा समय चले जाए। तो इसलिए आज से ये प्रेरणा लेके जाना, व्यर्थ से मुक्ति, अविद्या।